शांति। ब्राह्मण जीवन की विशेषता या महानता, इस विषय को लेकर अभी हम कुछ बातें सुनेंगे। ये तो हम सभी कहेंगे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, है ना? सभी को ये निश्चय है, जो समझते हैं निश्चय हाथ उठाएं। सभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण है। दुनिया में तो जात पात में जाते हैं, जो ब्राह्मण जात का होता है उसको बड़ा नशा होता है कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन बाबा कहते हैं वो भले अपना नशा दिखाए, मैं ब्राह्मण हूं, बहुत नशा होता है लौकिक ब्राह्मणों को, परंतु फिर भी वो मुख वंशावली नहीं है, क्या है? कुख वंशावली है। पर उन कुख वंशावली ब्राह्मणों से भी पूछो कि आप ब्राह्मण कैसे पैदा हुए, तो कहेंगे ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। परंतु ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण पैदा होते हैं वो केवल इस संगम युग पर ही होते हैं। जिनको शिव बाबा से डायरेक्ट ज्ञान मिलता है ब्रह्मा मुख द्वारा, तो कहेंगे कि ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया। लेकिन इसी का ही यादगार है भक्ति मार्ग में, या द्वापर युग से ब्राह्मण जाति बहुत ऊंची मानी जाती है। कोई भी कार्य होता है उसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए, है ना? चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे विवाह हो, चाहे किसी मकान का मुहूर्त हो या उद्घाटन हो, कुछ भी हो, कोई भी कार्य होता है तो उसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मण के बिना वो कार्य सफल नहीं होता है। पर वास्तव में है इस समय की यादगार कि ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जहां है वहां वो कार्य सफल होता है, और जीवन में जितनी आवश्यकताएं हैं उसमें ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। तो मानो कि हर कार्य में सफलता इस संगम पर हम बच्चों को मिलती है, जिसको बाबा कहते हैं तुम्हारे कदम कदम में पदमों की कमाई है। क्योंकि ब्राह्मण जहां जाएगा, जहां कदम रखेगा, वहां पदमों की कमाई है, कमाई कमाई है। वैसे भी लौकिक में देखते हैं ना, ब्राह्मण जहां जाएगा खर्चा थोड़ी कुछ करके आता है, क्या करता है, हा? कमाई कमाई होती है उसको। वैसे भी धामा भी खाएगा और दक्षिणा भी लेकर आएगा, तो धामा भी खाया वो भी मिला उसको, फिर दक्षिणा भी साथ में मिली, फिर कुछ सौगात भी मिली, मान शान महिमा उसका सत्कार सब मिलता ही मिलता है। देता तो खुद अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, अपनी तरफ से क्या देता है, मंत्र उच्चारण करता है, पूजा कराता है, पाठ कराता है, मानो उसका पाठ देने का तो है परंतु लेना ज्यादा है, देना तो है। ब्राह्मण चोटी है, इसलिए सबसे उत्तम उनका कार्य है। इसीलिए वैसे भी दुनिया में जो समाज में चार वर्ण दिखाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें ब्राह्मण का जो रोल है वो सबसे ऊंचा होता है। तो ब्राह्मण का काम क्या होता है? पढ़ना और पढ़ाना। ब्राह्मण के कच्छ में कुरम होता है ना, इसे बाबा कहते हैं ना, कुरम माना किताब, हमेशा किताब उसके साथ रहता ही है, अपने बगल में किताब रखता है, वो तो शास्त्र दिखाते हैं, यानी पढ़ना पढ़ाना उसका काम है। ब्राह्मण के लिए कहेंगे वो खुद भी पढ़ता रहता है और दूसरों को भी पढ़ाता रहता है, सुनाता रहता है। तो बुद्धिजीवी बहुत होना चाहिए, तभी तो पढ़ेगा और पढ़ाएगा। और दूसरा ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? यज्ञ करना और कराना, हवन रचते हैं, इसमें स्वाहा स्वाहा स्वाहा, मंत्र जाप किया स्वाहा किया, मंत्र जाप किया और स्वाहा किया। केवल खुद ही नहीं करते, दूसरों को भी कहेंगे स्वाहा करो, तो स्वाहा स्वाहा खुद भी करेंगे और दूसरों से भी कराएंगे। ये ब्राह्मण की विशेषता होती है। तो बाबा कहते हैं तो ये भी संगम की यादगार कि पढ़ना और पढ़ाना है, यही सबसे मुख्य कार्य ब्राह्मणों का है। इतने ज्ञान रत्न भगवान ने हमें दिए हैं, कितनी डायरियां भरी होगी, हाँ भरते ना डायरीज, जो लिखते ही रहते हैं सदा हाथ उठाए, क्लास में लिखते हैं, मुरली लिखते हैं, हाँ सब नहीं लिखते हैं, आप नहीं लिखते हैं तो सही डायरी आपके पास, हाँ बाकी हो सकता है कोई सोचे बहन जी मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, कहते कोई बात नहीं, और ही अच्छा है, जो दुनिया का आपने जो कुछ पढ़ा लिखा वो तो सब भूलना है यहाँ, वो तो कुछ भी याद नहीं रखना। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां अगर किसी ने ली भी है तो बाबा का बनने के बाद, बाबा की सेवा करने के बाद शुरू करते हैं तो कहीं वो तो सब भुलाना ही पड़ता है। हमको भी याद है, मैं इतना पढ़ती थी कॉलेज पढ़ती थी, तो फिर मैं सोचती थी इतना तो पढ़ लेकिन किस काम आएगा किस काम आएगा, क्योंकि इतना तो क्या काम आएगा, क्योंकि अनलेस कि हम वो पढ़ाएं दूसरों को या कुछ ऐसा जॉब करें उससे संबंधित हो, रिलेटेड हो, तो समझ सकते भाई जो हमने पढ़ा वो काम आएगा। बाकी तो जो पढ़ते हैं वो तो इतना रट लेते हैं, काम तो बाद में कुछ आता नहीं है। पर ये पढ़ाई तो केवल इस जन्म में तो काम आती है, परंतु साथ साथ बाबा कहते हैं 21 जन्म तक इस पढ़ाई की तुमको प्रारब्ध मिलेगी। वो जो पढ़ाई है, चलो डिग्री भी ले ली हाथ में, बहुत बड़ी डिग्री ले ली, और आए रास्ते में जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, वही मर गया, समझो डिग्री हाथ में है और मर गया, रोड एक्सीडेंट में मर गया, वो डिग्री चलेगी साथ में? फिर अगले जन्म में फिर ABCD है, फिर बच्चे को जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ना पड़ेगा। तो डिग्री तो साथ चली नहीं, पर ये ज्ञान रत्न बाबा कहते भले इस रूप में नहीं चलेंगे लेकिन जितने यहाँ ज्ञान रत्नों से भरपूर रहेंगे उतना भविष्य में माला माल हो जाएंगे, उतने ही वो सच्चे रत्न बन करके हमको मिलेंगे। जितना पढ़ते रहेंगे उतना वहाँ ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ना और पढ़ाना है इस संगम की यादगार, लेकिन ये सबसे ऊंचा कार्य है। इसलिए कहते हैं टीचिंग जॉब इज अ नोबल जॉब, नोबल। एक टीचर पढ़ाता है ना, तो बच्चों को पढ़ाता है, अब वो तो टीचर तो वहीं का वहीं रहता है, प्राइमरी स्कूल का टीचर होगा तो प्राइमरी स्कूल में सालों साल पढ़ाता ही रहेगा 25-30 साल तक पढ़ाता जब तक उसकी रिटायरमेंट ना हो, और उसका जो स्टूडेंट है वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, वो तो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बन जाएगा उसका स्टूडेंट, और वो प्राइमरी टीचर वहीं का वहीं। लेकिन फिर भी आज बताए ना, मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, ये कभी चुत्तू नहीं होते, क्योंकि वो तो दाता बन करके देते हैं माता पिता और शिक्षक, परंतु उसका ऋण कभी चुकतो नहीं हो सकता है। कितना भी वो बड़ा हो जाए, पढ़ लिख जाए, आगे बढ़ जाए, परंतु टीचर तो टीचर ही होता है। यहाँ पर अब्दुल कलाम आए थे ना, अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी, यहाँ भाषण किया था ज्ञान सरोवर में। तो उसने कहा कि देखो मैं आज इस पद तक कैसे पहुंचाऊं, तो मैं तो कहूंगा मेरे पिता माता पिता और मेरा प्राइमरी स्कूल टीचर, उसके बदौलत आज मैं इस स्थान पर पहुंचाऊं। तो मैं कभी भी अपने माता पिता और शिक्षक को भूल नहीं सकता हूं, भले वो प्राइमरी टीचर ही था। उसका उस समय टीचर जिंदा था, तमिलनाडु में कहीं किसी गांव में वो पैदा हुआ था और वहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था। तो उसने कहा कि आज भी मैं जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, अपने पैतृक गांव में, तो वहां मैं उस टीचर के पास जरूर जाता हूँ और मैं उसके पांव छूता हूँ। वो कहते नहीं नहीं नहीं, आप तो राष्ट्रपति बन गए इस देश के, मैं तो कुछ नहीं हूँ तुम्हारे सामने। तो कहते नहीं, तुम्हारे कारण ही मैं आज ये बना हूं। तो और दूसरा उसका पिता, उसकी माँ भी, उसकी माँ के बारे में भी बहुत सुनाता था कि देखो मैं एक बार मैं अपनी कजिन के साथ, उसकी कजिन सिस्टर थी कजिन, तो वो दोनों छोटे थे तो पेड़ पर लटक रहे थे, पेड़ पर, तो पेड़ पर ऐसे नहीं बच्चे लटकते हैं पकड़ करके ऐसे कर रहे थे। तो क्या हुआ कि मेरी माँ आई और मुझे कहती है, नहीं या बाप आया या माँ आई, मुझे कहते कि जोर से पकड़ना, हाँ जोर से पकड़ना। तो मैं तो जोर से पकड़ा और मैं झूलता रहा झूलता रहा, बहुत मजा आया। पर जब उस कजिन मेरी कजिन की माँ आई, उसने कहा बेटी गिरना नहीं गिरना नहीं, तो गिर गई। गिरना नहीं कहा तो गिर गई। अगर मेरी माँ की तरह मुझे उसकी माँ भी उसको कहती कि जोर से पकड़ना, बात तो वही है, जोर से पकड़ना और गिरना नहीं, दोनों में अंतर है क्या है? अंतर है या एक ही बात है, क्या अंतर है? वही चीज है ना, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। गिरना नहीं गिरना नहीं, तो गिरना नहीं मना, पहले तो गिरने का सोचेगा, फिर सोचेगा गिरना नहीं है, और जोर से पकड़ना तो वो जोर से पकड़ेगा, तो श्रेष्ठ किसको कहेंगे? हाँ गिरना नहीं। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं अपने बच्चों को, बेटा गिरना नहीं गिरना नहीं, हाँ ये करना नहीं, ये नहीं करना, तो जो नहीं करना है वो कहते तो वही करेगा। और कई बार ऐसे होता है जो करना है कहो तो नहीं करेगा, नहीं करना है तो करेगा, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। लेकिन जो बचपन में शिक्षाएं मिलती है वही बड़े रूप में बहुत काम आती है, तो इसलिए टीचर का ऋण कभी चुकता होता नहीं, माँ बाप का ऋण कभी चुकता होता नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण माना जो पढ़े और पढ़ाए। अभी भी हम लोग देखते हैं, अभी कितने 50 साल से बाबा का ज्ञान हम दे रहे हैं, तो बचपन में कहीं पर किसी सेंटर पर होंगे तो वहाँ किसको कोर्स कराया होगा, या उस समय किसको याद है कितनों को कोर्स कराया। लेकिन वो कई बार आएंगे कहेंगे बहन जी 40 साल पहले आपने मुझे कोर्स कराया था, अभी याद थोड़ी हमको, आप ही हमारी पहली टीचर है, ऐसे समझो कहेंगे। तो बस कहाँ भी जाएंगे तो जरूर चिट्ठी लिखेंगे, अब यहाँ हूँ, अच्छा फिर हमको क्या, अब गए तो गए, अभी हम कहाँ आपको ढूंढेंगे या याद करेंगे, किसी को हम याद तो करते नहीं है। इतने आते हैं, हजारों आते हैं, हजारों क्लासेस करते हैं, शिविर करते हैं, हम कहाँ न किसी से मिलते भी हैं, कहाँ तक मिलते रहेंगे किसी एक व्यक्ति से, व्यक्तिगत रूप से तो मिलना भी नहीं हो पाता है। लेकिन वो तो याद रखते हैं, कोई एक शब्द उनको कहा होगा, कोई ऐसा शब्द जो वरदान के रूप में उनको लग गया, तो कहेंगे बहन जी आपने जो वो वरदान दिया था ना, वो तो उससे तो मेरा बेड़ा पार हो गया, मतलब जो भी कहें, अब हमको तो याद भी नहीं है क्या कहा होगा, याद थोड़ी होता है, लेकिन वो याद रखते हैं। मानो ये क्या भाव है इस कहने का कि ये ऋण चुकता होता नहीं। तो हम बच्चों को बाबा ने इतना ऊंचा स्थान दिया है, ब्राह्मण माना, पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये ब्राह्मणों का काम है, किसकी बुराइयां छुड़वाना, ये कितना महान कार्य है। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हर एक से बुराइयां छुड़वाओ, उनको महान बनाना है, जैसे आप हो वैसे दूसरों को आप समान बनाओ। दुनिया में तो कोई ऐसे सोचते नहीं है कि आप समान बनाएं। हाँ, माता पिता और टीचर ये जरूर सोचता है, गुरु तो कभी नहीं सोचेगा। सोचेगा क्या? वो सोचेगा मुझे ही गद्दी मिले, दूसरा मेरी कोई गद्दी छीन न ले। लेकिन माता पिता और शिक्षक यही चाहेंगे कि मेरे बच्चे मेरे जैसा बने। बच्चा अगर बहुत आगे जाता है, माँ बाप को कितनी खुशी होती है। टीचर का स्टूडेंट कोई आगे जाता है, टीचर को कितनी खुशी होती है। बाबा मुरलियों में कई बताते हैं, वो आकर के टीचर को मिठाई खिलाएंगे, मैं पास हो गया, टीचर भी इतनी खुश कि मेरे स्कूल का, मेरे कॉलेज का विद्यार्थी नंबर वन लिया, ये लिया, बड़ा नशा चढ़ता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, तुम सबको आप समान बनाओ, ये ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन है। तो यही महानता है ब्राह्मण की। और सबसे बुराइयां छुड़वाओ, किसके अंदर कोई भी बुराई है तो वो छुड़ाने का काम करो। हमारे पास आते हैं ना शिविर में, तो हमको कई बार पूछते हैं ना कि आपकी फीस क्या है, इतना बड़ा आपका यूनिवर्सिटी, आप कहते हैं यहाँ की फीस क्या है, तो हम क्या कहते हैं, क्या फीस है हमारी, हमारी फीस क्या है, पांच खोटे सिक्के, पांच खोटे सिक्के यहाँ की फीस है, वो आप देना चाहो तो दे दो, देके जाओ तो बहुत अच्छा है, यहाँ के, यहाँ पर पांच खोटे सिक्के। कौन से खोटे सिक्के? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो यही हमारी फीस है, पांच खोटे पैसे और एक आना, एक आना लेके जाओ, पांच खोटे पैसे देके जाओ। अब जिसको जो मंजूर हो वो हाथ उठाए, तो वो सारे हाथ उठाते हैं। तो हाँ, जाएंगे सेंटर, एक आना माना एक बार रोज सेवा केंद्र पर आना, वहां जाना। तो इसीलिए ब्राह्मणों का ये विशेष कर्तव्य है, एक दिन भी अगर किसी की सेवा नहीं की तो बाबा कहते खाना हराम है। एक बार दादी जानकी जी अपना अनुभव सुनाती है कि बाबा ने एक दिन कहा, वो नाश्ते पर नाश्ता करने गई, तो बाबा ने कहा तुमने नाश्ता कर लिया, किसकी सेवा की? तो दादी ने कहा नहीं, तो क्लास का पूरा वो नाश्ता करने गई, किसी की सेवा नहीं की तुमने, ऐसे ही नाश्ता कर लिया, अंदर गया कैसे? कहती है वो दिन आज का दिन, जब तक मैं किसी की सेवा नहीं करती हूँ ना, तब तक मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ। ये मना दादी की ये विशेषता है। तो मुझे याद है साकार में बाबा ने ये मुरली जब चलाई थी, तो तब मैं स्कूल में पढ़ती थी, बॉम्बे में बाबा आए हुए थे, तो मुझे याद है, तो बाबा ने ये पॉइंट कही थी कि बच्चे आप जब तक किसी की सेवा नहीं करो ना, तब तक आप खा कैसे सकते हो, अपने को कैसे आप दे सकते, जब तक दूसरे को नहीं दिया है। माताओं की तो यही विशेषता होती है, पहले सबको खिला करके फिर खुद खाएंगे, खुद ही पहले खा जाएंगे। तो पहले सेवा करनी चाहिए। तो हम बॉम्बे में रहते थे, अपोलो बंदर, वहां गेटवे ऑफ इंडिया है, वहीं बाबा आए थे, साकार बाबा, रीगल सिनेमा है बॉम्बे में, उसके सामने, और वहीं गेटवे ऑफ इंडिया है ना, अपोलो गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे का। तो हम मुरली के बाद रोज जाते थे गेटवे ऑफ इंडिया पर। हमारे साथ एक माता थी, बुजुर्ग माता थी, हम दोनों जाते थे, उसको भी सुनाने का बड़ा शौक होता था, तो मैं उनसे भी बहुत सीखी कैसे सुनाई। मैं छोटी थी, पढ़ती थी, तो संडे संडे जाते थे स्कूल, पहले सेंटर जाती थी फिर स्कूल जाती थी। संडे के दिन तो स्कूल नहीं जाना है, तो मैं करीब 14-15 साल की होगी, 13-14 साल की, तो मैं उसके साथ जाती थी। और वो प्यार से न किसको ज्ञान सुनाती थी, बहुत प्यार से सुनाती थी, तो मैं सुनती थी, फिर मैंने सुनाना शुरू कर दिया। इतना अच्छा लगा लोगों को, इतना अच्छा लगा, वो रोज वो हमारा इंतजार करते थे, वो आज आई नहीं, हाँ बहन जी आई नहीं, तो क्योंकि रोज तो मैं नहीं जा सकती थी, वो माता जाती थी पर मैं नहीं जा सकती, मैं स्कूल जाती थी, लेकिन संडे के दिन जाती थी, तो संडे के दिन तो भीड़ हो जाती थी, वो बहन जी आएंगी, हाँ वो छोटी बच्ची आएंगी और वो बहुत अच्छा सुनाएगी, तो हमको इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी। वो 12 बज गए, भूख ही नहीं लगती थी, क्योंकि ज्ञान देने में इतना नशा चढ़ता था, जो बात मत पूछो। वो मैं आपको बचपन की अपनी बातें सुनाती हूँ, तो इतना शौक था, सेवा का शौक, सुनाने का शौक। हाँ फिर बाबा की याद तो रहती है कि नहीं रहेगी। तो ये ब्राह्मणों का पहला क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान, और जो सुना है अंदर धारण किया वो सबको सुनाओ। मुझे याद है बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि जो बाबा की मुरली चली फिर मुरली के बाद सब आपस में बैठो, आपस में रूरियान करो। बाबा कहते सेमिनार करो, मुरली में आते सेमिनार करो, आज बाबा ने क्या कहा, तो आपस में बैठो और एक दो से लेन देन करो, तो ये भी तो आपका मुख खुलेगा। नहीं कुछ सेवा है, कोई बात नहीं, चित्रों के आगे खड़े हो जाओ, चित्रों के आगे बैठ करके वो सुनाओ ज्ञान, बोले अपने आप को ही सुनाओ। मैंने भी ऐसे प्रैक्टिस की, मैं क्या करती थी उस समय, नहीं वो टेप मशीन आई थी, भाषण कैसे करना होता है, मैं टेप मशीन खोल के बैठ जाती थी और जो मैं सुनाती हूँ वो रिकॉर्ड कर लेती थी, फिर मैं सुनती थी, फिर मैं अपने आप को करेक्शन करती थी, हाँ ये ऐसे शब्द एक्स्ट्रा है, ये नहीं बोलना चाहिए, ये ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे शब्द कहना चाहिए, ये ऐसे, मतलब मैं अपने आप को ही ट्रेनिंग देती थी, कोई उससे और ने कोई ऐसे ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन ये कला है। फिर कई बार जब पढ़ाते क्लास कराते थे तो लोग, हम सब लोगों से पूछते थे आप लोग ने क्या टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, क्योंकि एसटीडी में वो जाते ना टीचर ट्रेनिंग का, लौकिक टीचर पढ़ाने की कला। हमने कहा नहीं, हमको तो बाबा ने ही पढ़ा लिया है, बाबा ने ही हमको सिखाया, भगवान ही हमारा टीचर है, वही हमको पढ़ाता है। तो इसलिए ब्राह्मणों की ये बहुत बड़ी महानता, इसलिए इसको नोबल प्रोफेशन, सबको आगे करना, सबको आगे करना, और सबको आगे करना। परंतु इसका मतलब इधर कि हम पीछे रह जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं क्या, वो टीचर पीछे रह जाता है, बाकी बच्चे आगे चले गए, नहीं, वो ऋण चुकता नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते ये सबसे महानता है ब्राह्मण जीवन की। दुनिया में ये सब कुछ नहीं होता है, सत्संगों में जाते हैं सतवचन महाराज, हाँ हाँ झुटके खाते रहेंगे, हाँ सोते रहेंगे, न कोई स्टूडेंट बन के नोट करते हैं, कुछ भी नहीं। फिर उनसे पूछो गुरु जी ने महात्मा जी ने क्या कहा, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, क्या कहा वो पता नहीं। बाबा कहते डब्बे में ठिकरी, डब्बे में ठिकरी मालूम, कोई डब्बा हो ना खाली डब्बा, उसमें लकड़ी के टुकड़े डाल दो और ऐसे 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 करो तो क्या होगा, या मिट्टी के टुकड़े डाल दो तो क्या होगा, आवाज तो बहुत करेगा परंतु वो कोई काम की चीज है क्या। तो सुना जरूर, इधर उधर देखा, यहाँ वहां देखा, गप्पे मारते रहे, बातें करते, वाह वाह वाह, हाँ वाह वाह। पर बाहर आए वो सब बाबा कहते झाड़ के आते हैं, सब जो पल्लू है ना वो वही झाड़ के आ गए, सब कुछ वही का वही बह गया सब कुछ। लेकिन नहीं, ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा, सच्चे ब्राह्मण अपनी झोली में भर करके फिर बांटेंगे, सबको दान करेंगे। और ये ज्ञान दान, गुण दान, शक्ति दान ऐसा है जो जितना बांटो उतना कम हो उतना बढ़े, यही तो विशेषता इस धन की, धन दिए धन ना खुटे, इतना ऊंचा ज्ञान धन भगवान हमें देते हैं। तो ये ब्राह्मण की क्वालिफिकेशंस है, यही ब्राह्मणों की महानता है। और सदा अपने को हम स्टूडेंट समझते हैं, ब्राह्मण माना पढ़ना पढ़ाना माना स्टूडेंट ही रहना, केवल मैं टीचर हूँ ये नहीं, स्टूडेंट ही हूँ, हमेशा पढ़ रहा हूँ। देखो ब्रह्मा बाबा कोई कम टीचर नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा हमेशा क्या कहते, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं भी सुनता हूँ। हालांकि ब्रह्मा बाबा नंबर वन स्टूडेंट थे ना। ब्रह्मा बाबा ने कभी मुरली मिस की होगी? मिस की होगी ब्रह्मा बाबा ने मुरली? क्यों, कभी मिस नहीं की मुरली? कभी तो मिस की होगी कि नहीं, बोलो कैसे नहीं मिस की? हाँ, शिव बाबा उनके मुख से ही तो सुना रहे हैं, तो ये कैसे मुरली मिस करेंगे? उनके मुख से ही तो सुना रहे, अब मैं बोल रही हूँ तो सुन भी तो रही हूँ ना। तो ब्रह्मा बाबा ने कभी मुरली नहीं मिस की। मान लो कभी बाबा अस्वस्थ भी थे, ऑपरेशन भी बाबा ने कराया था, हॉस्पिटल में भी थे, तो उस समय कैसे मुरली चलाएंगे? तो शिव बाबा उनसे मुरली लिखवाते थे, बाबा लिखते थे, पन्ने भरते थे। शिव बाबा इतना फास्ट फास्ट बाबा से लिखाते थे, बाबा जब पत्र भी लिखते इतना फास्ट ना, बाबा की हैंड राइटिंग यशु दादी पढ़ सकती थी। उर्दू लिखते थे, सिंधी, यशु दादी पढ़ती थी, उस पर हिंदी करती थी। देखे बाबा के पत्र लिखे, देखे हैं? जिसने नहीं देखे आते थे, देखे ही नहीं है बाबा की हैंड राइटिंग? वहां रखा है शायद, नहीं झोपड़ी में रखा है कि नहीं पता नहीं, रखा तो था बीच में हिस्ट्री हॉल में रखा है। वो बाबा की चीजें रखी हुई है, छोटी छोटी चीजें हिस्ट्री हॉल में है, देखना। तो क्योंकि शिव बाबा उनसे लिखवाते थे, इतना फास्ट लिखते थे बाबा, क्योंकि शिव बाबा की शक्ति थी, डबल इंजन थी। तो डबल इंजन के रूप में, तो गाड़ी में डबल इंजन लग जाए तो कितनी भी ऊंचाई पर जाना पड़े गाड़ी को, वो जाएगी ना, खड़ी थोड़ी हो जाएगी, तो जाती रहेगी, क्योंकि ऊपर से तो खींच रहे हैं पर नीचे से भी उसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं। तो इसीलिए जैसे हिल स्टेशन पर शिमला में मसूरी में जाते हैं ना, तो डबल इंजन है। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की डबल इंजन, और हम उनके बच्चे, तो हम डिब्बे पीछे थोड़ी रह जाएंगे डबल इंजन के साथ ही साथ है। तो इसीलिए ये सबसे ऊंची महानता है ब्राह्मणों की। और अगर पढ़ाई का शौक नहीं है, पढ़ाने का शौक नहीं है, बाबा का ज्ञान सुनाने का शौक नहीं है, तो भी ब्राह्मण की मानता नहीं है। इसीलिए जो अपने आप को ब्राह्मण समझता है वो जरूर पढ़ेगा और पढ़ाएगा, स्वाहा करेगा, स्वाहा कराएगा, अपनी कमियां कमजोरियां भी स्वाहा करेगा, दूसरों को भी प्रेरणा देगा, क्योंकि यही महानता है इस जीवन की। फिर ब्राह्मण किसको कहेंगे? तो बहुत शास्त्रों में तो बहुत बातें आती, ब्राह्मण किसको कहेंगे? जो ब्रह्मा से संबंधित है, ब्राह्मण माना जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। तो ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा का मुहूर्त है, आदिकाल है, ब्रह्मा माना आदिकाल। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्मा जब आता है तब उठे, या सवेरे अमृत वेले उठे, अमृत पीने का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय उठ करके योग करे, वो महान योगी, वो सच्चा ब्राह्मण। अगर ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहे तो ब्राह्मण थोड़ी कहेंगे उसको, किसी बहुत अच्छी किसी ने बात कही कि जो अमृत वेले उठ के योग करे वो सच्चा योगी। कई तो 2 बजे भी उठ करके योग करते हैं, परंतु ऐसा भी नहीं कि अपने आप को कष्ट देना है, उठो और फिर योग करने बैठो और झुटके ही खाते रहो, ऐसा भी ना हो। सतर्क हो बैठो तब कहेंगे कि हाँ योग में बैठे हैं। और कैसे बैठो, बाबा ने आज क्या बताया? बाबा को देखो, बाबा आपको देख रहा है, आप बाबा को देख रहे हो, ऐसे ही। वो एक है ना बड़ा सुंदर फोटो है, एक बच्चा शिव बाबा को देख रहा है, शिव बाबा उसकी ऊपर, शिव बाबा की लाइट उस पर पड़ रही है। तो मैं भी छोटा बच्चा बन गया, बाबा के सामने हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे उठ के बाबा को देखो, लाइन क्लियर मिलेगी, बीच में कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई और किसी का फोन नहीं, कुछ नहीं, लाइन क्लियर मिलेगी। जो भोगी होते हैं वो सब समय सोए होते हैं, और जब भोगी सोते हैं तब कहते योगी जागते हैं। दुनिया में देखो जो भोगी है एकदम ऐश ऐश में, या शराब, ये जो जाते हैं कहाँ पर, क्लबों में जाते हैं, तो रात को 3-4 बजे वापस लौटते हैं और उस समय फिर जाके सोते हैं। तो जब भोगियों के सोने का समय, उस समय योगियों के जागने का समय। तो वो सोए हुए हैं तो फिर हम सहज रूप से बहुत शुद्ध वातावरण में योग कर सकते हैं। आज भी बाबा ने कहा ना कि अंत में सब जाएंगे तो लड़ने झगड़ने वाले सबको सुला देंगे, जाओ परम धाम में सो जाओ, और सतयुग त्रेता में कौन राज्य करेंगे? हम ब्राह्मण सो देवता राज्य करेंगे, लेकिन वो झगड़े करने वाले सब सो जाए तभी तो करेंगे ना। तो इसीलिए कितनी ऊंची प्रारब्ध भगवान हमको देते हैं, क्योंकि नींद को जीतने वाले बने। तो योगी कौन जो सवेरे सवेरे 4 बजे से पहले उठ के योग तपस्या करे, अगर उसके बाद उठे तो फिर कहेंगे रोगी, उसके बाद उठे तो भक्त। 5 बजे तक तो भक्त भी उठ जाते हैं, भले वो ज्ञानी नहीं है, कोई बहुत भगवान का परिचय भी नहीं, लेकिन भक्त उठ जाते हैं क्योंकि अपने इष्ट की आराधना करते हैं। तो 5 बजे उठे तो भक्त कहलाएंगे, 6 बजे उठे तो रोगी, और 7 बजे उठे तो भोगी, उसके बाद कोई उठे तो महारोगी महाभोगी, योगी नहीं। 4 से पहले उठे तो महायोगी। तो हमको क्या बनना है? रोगी भोगी बनना है क्या? क्या बनना है? महायोगी। तो ब्रह्म मुहूर्त ये एक पहला नियम है ब्राह्मणों का, और बाबा ने शुरू से ये नियम हम बच्चों को दिया है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, भले कितने बजे भी सोना पड़े, देर से सोते हैं कुछ काम होता है, पर 4 बजे उठ के योग जरूर करना है। फिर भले चलो बाद में सो जाते हैं, हर्जा नहीं है क्योंकि थके हुए होते हैं, लेकिन उस समय अपने आप आंख खुल जाए, कोई सोचे नहीं नहीं अब मैं तो रात को देर से सोया हूँ, सवेरे अभी इतना 4 बजे नहीं उठना है। तो बाबा कहते वो वरदान का समय है, भगवान से डायरेक्ट वरदान मिलते हैं। उस समय अगर सोए तो जिन सोया तिन खोया, उस समय याद करना, जिन सोया तिन खोया, अगर रजाई ओढ़ेंगे तो रजाई नहीं मिलेगी, याद रखना। तो रजाई 1 सेकंड में उतर जानी चाहिए क्योंकि रजाई लेनी है, नहीं तो रजाई को प्यार करेंगे तो रजाई नहीं मिलेगी। नहीं तो उस समय रजाई बहुत प्यारी लगती है ना, ठंडी के दिनों में रजाई बड़ी प्यारी लगती है सुबह सुबह। तो इसीलिए क्या बनना है वो लक्ष्य हमें मिल जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त ये ब्राह्मणों की बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ी विशेषता है। फिर दूसरा ब्रह्मा से संबंधित है ब्रह्मा भोजन, वो ब्रह्म भोज कह देते हैं। अभी ब्रह्म तत्व का भोज होता है क्या? किसका भोज होता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा अपने बच्चों को भोजन खिलाते हैं, ब्रह्मा का भोजन होता है। शिव भोजन कौन सा है? शिव भोजन है ज्ञान, ये ज्ञान का भोजन। और ब्रह्मा भोजन वो स्थूल भोजन, ब्रह्मा बाबा का या शिव बाबा का भंडारा है, क्यों नहीं? तो इस भंडारे से खाते हैं, लेकिन है तो ब्राह्मण खाने वाले, ब्राह्मण ही पकाने वाले, ब्राह्मण ही देने वाले, तो इसीलिए ब्रह्मा भोजन है। इसलिए इसका गायन है कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते, हालांकि कोई वहां तरसते थोड़ी होंगे देवताएं, देवताओं को क्या कमी होगी जो ब्रह्मा भोजन के लिए तरसेंगे। उनको तो पता भी नहीं होगा कि कोई ब्राह्मण भी हम थे पहले और फिर अभी देवता बने हैं। लेकिन ये ब्रह्मा भोजन का ब्राह्मणों का महत्व बढ़ाने के लिए कहा गया है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, क्योंकि बनाने वाले पकाने वाले देने वाले लेने वाले इतने ऊंच कोटि के पवित्र ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन का महत्व है। और तीसरा फिर है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान, वास्तव में वो ज्ञान भी जो हमें परमात्मा देते हैं वही ब्रह्म ज्ञान है। शिव परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा देते हैं, उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञान कह दिया। पर शिव बाबा ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान देते वो तत्व, तत्व माना तथ्य सार, क्योंकि भक्ति मार्ग में सार असार है या विस्तार है, पूरा झाड़ है, शास्त्रों में क्या है, इतना विस्तार है, और बाप बाबा आकर के हमें सार देते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान तत्व मना सारा उसका सार निचोड़। जब परीक्षा के दिन नजदीक आते हैं तो क्या होता है, विद्यार्थी कोई सारा कोई सिलेबस थोड़ी पढ़ता है, सारा सिलेबस तो पूरा साल तक पढ़ना होता है, पर परीक्षा के दिनों के समय क्या करते हैं, क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, बस जो परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं उसी को ही पढ़ते हैं और कुछ नहीं, सारा साल की पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं फिर से, क्योंकि वही काम की चीज है। बाकी तो बहुत विस्तार था। जब एग्जामिनेशन में हमें उत्तर देना है, प्रश्न आ सकते हैं, वही हमारा हमारी हार और जीत, फेल और पास का सवाल हो जाता है। और बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है, आपका अंतिम पेपर कौन सा आएगा। वैसे तो कदम कदम पर पेपर है, कदम कदम पर पेपर, खाली अंत में थोड़ी बात है पेपर की, कदम कदम पर अपने संस्कारों का पेपर, परिवार का पेपर, अलौकिक परिवार का भी पेपर, कई बार लौकिक परिवार का पेपर नहीं आता, अलौकिक का ही पेपर आता है, जिसको बाबा कई बार कहते वो तो लोहे की जंजीरें तोड़ के आए, पर ये सोने की सूक्ष्म जंजीरें वो भी कोई कम जंजीर नहीं है। कई बार ना सोने की जंजीर किसको पड़ी रहती है ना, बहुत चिंता रहती है कोई टूट न जाए, गिर न जाए, सारा दिन अपना हाथ इधर रखते रहते हैं, वो जंजीर पड़ी है ना जंजीर ही तो है, भले वो क्या भी कहो उसको, वो भी तो जंजीर है, तो कहाँ लोहे की और वो सोने की जंजीर तो है ही है। और कई बार उसको थोड़ी कड़ी कमजोर हो जाती है, कहाँ गिर गई पता ही नहीं, किसने छीन लिया पता ही नहीं। मुझे याद है मुंबई में तभी तो बहुत कुछ होता था, ट्रेन में जाते थे तो वो जो महाराष्ट्रीयन औरतें होते हैं ना, उनको मंगल सूत्र पड़ा रहता है, वो भी सोने का होता है, अंदर सोना काफी होता है, तो वो सोने मंगल सूत्र को जोर से पकड़ करके फिर ट्रेन में चढ़ती थी, कहीं पीछे से अगर किसी ने खींच लिया वो टूट गया तो उसका मंगल सूत्र गया। तो समझो किसी ने चिल्ला, रे मेरा मंगल सूत्र चला गया, मेरा मंगल सूत्र, उसे सब पकड़ के जोर जोर से पकड़ के, वो ट्रेन भले छूट जाए पर हाँ मंगल सूत्र न छूटे, क्योंकि ट्रेन में चढ़ना माना कहते ट्रेन में चढ़ने के लिए रेसर और रेसलर बनना पड़ता है। मुंबई में दिल्ली का बस का भी ऐसा हाल होगा कि बस पकड़नी है तो बस स्टेप स्टॉप या खड़ी होगी वहां, तो पहले दौड़ो दौड़ो, फिर दौड़ करके अंदर चढ़ने लिए वो क्या बोलते हैं इसको, वो धक्कम धुक्की करो, तो धक्कम धुक्की माना बॉक्सिंग करो, रेसलिंग करो, तो पहले रेसर बनो फिर रेसलर बनो। तो दुनिया का तो यही हाल है, इतनी आदमशुमारी हो गई है। परंतु बाबा कहते हैं तुमको मैं तत्व ज्ञान देता हूँ, सारा निचोड़ देता हूँ, सारा सार दे देता हूँ, बस यही तुम पढ़ो। तो परीक्षाएं तो आएगी कदम कदम पर, वो परीक्षा में हमको वो ज्ञान काम आना चाहिए, जो बाबा कहते हैं ज्ञान गुण शक्तियां, शक्तियों का ये खजाना है, हर कदम पर यूज करो। सहन शक्ति कब यूज करना, उस समय सामना करने की शक्ति यूज मत करो, जब व्यक्ति है तो सहन करो, परिस्थिति है तो सामना करो, व्यक्ति का सामना मत करो, परिस्थिति आ गई वो सामना करो। तो किस समय कौन सी शक्ति काम में लानी है उसके लिए भी हमें सार का पता हो, सिचुएशंस कैसी भी हमारे सामने आए, तो इसीलिए सारा। और अंत का पेपर कौन सा होगा, वो एक सेकंड का पेपर होगा, कौन सा कौन सा पेपर होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये अंत का पेपर है। एक सेकंड में आत्मा शरीरी बन जाए, जैसे मक्खन से बाल आत्मा उड़ जाए वतन में, कोई देहधारी की याद न आए, एक सेकंड में हाय मेरा फलाना, हाय मेरा फलाना, हाय हाय किया तो गए काम से, हाय हाय करने से फेल, कुछ भी याद न रहे, आत्मा एक सेकंड में उड़ जाए, आत्म पंछी बन करके एक सेकंड में उड़ जाए। इसके लिए बाबा दो मिसाल देते, एक कैसे उड़ने से पहले अंदर जाना होगा, जैसे कछुआ एक सेकंड के पेपर में क्या करना है, कोई मेरे सामने बात आई तो कछुआ क्या करता है, अपने अंदर में अंग सिकोड़ लेता है ना, हाथ पैर सिर सब अपने अंदर ले लेता है, एक सेकंड में इतना स्थिर हो जाता है, घबराता नहीं है, वो अपने अंदर ले लेता है अंग, तो अंग अंदर ले लिया वो निश्चिंत हो गया। कई बार देखे वो ये कछुए, बस ऐसा पत्थर हो जाएगा जो बिल्कुल उसको हिला ही नहीं सकते आप, एकदम एकदम अंदर, और अंदर सुरक्षित वो अपने आप को महसूस करता है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है वो। और दूसरा बाबा मिसाल देते पंछी का, एक कछुए का और दूसरा पंछी का। पंछी की विशेषता क्या है, कोई सामने कोई ऐसी बात आई उड़ जाएगा, कोई बिल्ली भी सामने आई तो बिल्ली से डरेगा थोड़ी, क्या करेगा, उड़ जाएगा, बिल्ली तो ही ऊपर उड़ेगी उसके पीछे, उसको तो पंख नहीं है, पर कबूतर को तो या पक्षी को तो पंख है, पर उस समय अगर वो पक्षी भूल जाए कि मुझे पंख है तो क्या होगा, डर के मारे आंखें बंद कर दे तो पकड़ लेगी, पर पक्षी ज्यादा अपनी रक्षा कर सकता है, एक सेकंड उड़ सकता है। इसीलिए बाबा हमको क्या मिसाल देते, हवाई जहाज का, धरती पर है तो कितना सा बड़ा बड़ा दिखाई देता है, और जैसे उड़ान भरी ऊपर गए, सब ऊपर जो नीचे जो बड़ा बड़ा दिख रहा था वो क्या हो जाएगा, छोटा 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 छोटा, वो इतना उड़ गया जो बादलों से भी ऊपर, तो नीचे का तो कुछ दिखाई नहीं देता है, और जैसे ऊपर जाता जाता पता चलता ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे, पर जितना ऊपर तक जाना है उसके बाद फिर हलचल खत्म, एकदम स्थिर, एकदम स्थिर हो जाए। हवाई जहाज में बैठे वही पता नहीं चलता है, पता है, एकदम स्थिर। जब खिड़की से झांको तब पता चलेगा कि हम तो बादलों से भी ऊपर हैं, नहीं तो वो भी नहीं पता चले, बस नींद आ जाए, पता भी नहीं चलता कि इतने हजारों मील की ऊंचाई पर हम हैं, क्योंकि सब पार करके आ गए, निश्चिंत हो जाते एकदम। वो पायलट भी निश्चिंत हो जाता है। एक बार हम किसी छोटे प्लेन में गए थे, किसी देश में छोटा प्लेन होता है, तो वो पायलट की जो सीट है वो सब खुला था, आठ सीटर था तो सब खुला था, तो हम उसके पास गए तो हमने ऐसे ही देखा, इतने सहज बैठे हैं जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा, इतना ऊंचाई पर इतना सहज आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ भी करे, खा रहे हैं पी रहे हैं, और वो बस पर नजर है सब पर, जो वो उनके जो मशीनें चल रही है, उनके जो मीटर है वो सब देख रहे हैं, परंतु कुछ भी करना नहीं पड़ता क्योंकि अभी लेवल में आ गया, और मौज कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा लग रहा था, बातें भी की हमारे साथ। तो हमने कहा अभी आपको बिल्कुल कुछ नहीं, कहते नहीं अभी अपने आप चलेगा, कुछ भी नहीं है सामने। तो क्या है कि बाबा भी हमको ऐसे उड़ान भराते हैं, और उड़ान भर के माना मैं आत्मा शरीर से न्यारी, इसलिए अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, बाबा बार बार ध्यान खिंचवाते हैं, इतनी बार बाबा हर मुरली में ध्यान खिंचवाते, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, यही काम आएगा, यही अंत की परीक्षा होगी, ये ब्रह्म ज्ञान है सार निचोड़, ये नहीं खाली ब्रह्म तत्व को याद करना, वो तो सन्यासी लोग अपने को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं या तत्व योगी कहते हैं, और तत्व वो समझते में हम जाकर के उसमें लीन हो जाएंगे, और बाबा कहते तुम लीन नहीं होंगे, तो वहां जाकर के आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, फिर आना है सृष्टि मंच पर। तो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म बोझ, और चौथा भी है कुछ, मैं भूल गई जी, चौथा भी कुछ, परंतु ये तीन हाँ जी, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अच्छा ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा से संबंधित ये तीन बातें तो है ही, चलो ब्रह्मास्त्र भी क्यों, ब्रह्मास्त्र भी क्यों सोचे हम, परंतु फिर उसके बाद क्या है, और ब्राह्मणों की क्या विशेषता है, हाँ पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ स्वाहा करना, ये सब हमारी इतनी विशेषता बन जाए जो ब्राह्मण जीवन में आने के बाद और कोई पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है। कई ऐसे मैंने देखा है भाई बहने पीछे मुड़ के देखते हैं, और कैसे पीछे मुड़ के देखते हैं, कहते हैं मैं ना ऐसा था, शराबी था, कबाबी था, बहुत गुस्से वाला था, ऐसे था, बहन जी मैं तो बहुत बदल गया हूँ, मैं तो बहुत बदल गया हूँ, बहन जी आप पहले मेरा पहला जीवन देखते थे ना, आपको आश्चर्य होता कि कितना मैं बदल गया हूँ। बाबा कहते ये भी वर्णन करने की जरूरत नहीं है, किसी को सुनाना है, अनुभव सुनाना है, वो पूछ रहा है तो और बात है, बाकी तो ब्राह्मण बने माने नया जन्म मिल गया ना, तो नए जन्म वाले को पुराना जन्म याद होगा क्या? तो पुराना जन्म याद क्यों करते हो? मैं ऐसा था, इतना गंदा था, ये था। बाबा कहते नहीं, वो तो शूद्र थे, अभी तो ब्राह्मण बन गए हैं, तो ब्राह्मण बन करके पुरानी बातों को याद भी नहीं करना है, क्योंकि याद भी किया तो थोड़ा सेक लग सकता है वापस। आज बाबा ने कहा ना, त्रिशंकु बन जाएंगे फिर, न इधर के न उधर के, त्रिशंकु की कहानी आती है शास्त्रों में। उसने सोचा ऊपर जाऊं, ऊपर तो पूरा जाना नहीं आया, तो क्या हुआ, नीचे उतरना भी नहीं आया, तो वही लटकता रहा। ऐसे कुछ कहानी है। तो बाबा कहते ऐसे भी नहीं कि बाबा के बने फिर भक्ति याद आ गई, फिर वो तो छोड़ दी, पर फिर वापस गए तो न भक्ति कर सकेंगे, न ज्ञान समझ सकेंगे, न ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि कुछ न कुछ विकर्म भी किया। तो बाबा कहते गला भी घुट जाएगा, क्योंकि बोझ चढ़ा, बाबा का नाम बदनाम किया, तो ये सब बातें आएगी। इसलिए कहते चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, ये है लंबी खजूर, खजूर की पेड़ पर चढ़ने के समान है, पर चढ़ गए तो सब पा लिया, पर गिरे चकनाचूर। पर क्यों गिरे हम? इसलिए पीछे का नीचे मुड़ेंगे, पीछे देखेंगे तो गिरने का होगा ना, अगर हम पीछे देख ही नहीं रहे, ऊपर ही देख रहे हैं, तो पीछे गिरने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए पिछला जीवन याद भी नहीं करना है, अगर याद किया तो हम दूसरा भी मिसाल देते हैं, जैसे कोई डल विद्यार्थी होता है ना, डल स्टूडेंट, वो हमेशा ही फेल ही होता रहता, हमेशा ही फेल होता रहता, पर एक बार वो पास हो गया, 40 मार्क्स आ गए उसको, कितना खुश हो गया है, मैं पास हो गया, पर कितना आया, 40 पास हो गया, अब उसकी खुशी हुई, क्योंकि वो तो 100 से भेंट कर रहा है, 100 से भेंट किया तो 40 तो बहुत मिला, खुशी हुई पास हो गया। पर जो होशियार विद्यार्थी होता है वो 90% आया तो भी संतुष्ट नहीं है, क्यों नहीं है संतुष्ट, 90 आ गया तो भी संतुष्ट नहीं, हाँ नहीं, वो ये देखता है कि मेरा 10 मार्क कहाँ गया, ये 90 क्यों आया, 100 में से 100 आना चाहिए था, ये 10 कम होना माना, ये कई तो इतने अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे तो इस मैथमेटिक्स में 100 में से 100 आना चाहिए था, मेरा एक भी हिसाब गलत नहीं है, तो वो शिकायत करते हैं, उनका पेपर खोलवाते हैं, और टीचर की भूल निकलती है, जो उसको 90 दिया 100 नहीं दिया, भूल टीचर, क्योंकि उसको विश्वास है कि मुझे 100 में से 100 ही मिलना चाहिए, एक मार्क भी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिसाब में तो गणित में तो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो सब सही है, तो क्यों गलत कोई उसको काट सकता, नहीं काट सकता, बाकी और बातों में काट सकता है, कोई ऐसे लिखना है कुछ और, एक छोटा सा प्रश्न का बड़ा जवाब देना है तो कुछ उसमें कट सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें तो एक मार्क भी नहीं कटती अगर सब सही है तो इसीलिए उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है, अपना ऊपर विश्वास होता है। तो इसलिए जो होशियार स्टूडेंट होता है वो 100 से नीचे देखता है, और जो डल स्टूडेंट होता है वो 0 से ऊपर देखता है, और 0 को मापता है और वो 100 को मापता है। तो हमको क्या बनना है, 0 को देखना है या 100 को देखना है, 100 को देखना है या वो 0 को देखना है? वो दिखाते ना, एक स्टूडेंट था, उसने सारा पेपर देखा, उसको तो एक का भी जवाब नहीं आया, तो अंत में उसने लिख दिया, गाय हमारी माता है और कुछ नहीं आता है, इतना लिख दिया। अब टीचर पढ़े, गाय हमारी माता और कुछ नहीं आता, उसको क्या जवाब दें? तो जवाब में लिख दिया, बैल हमारा पिता है, मार्क्स देना बैल हमारा बाप है, मार्क्स देना पाप है। चलो हो गया जीरो। मार्क्स कैसे देंगे अगर यही जवाब दिया तो? तो इसीलिए जल्दी खुश भी नहीं हो जाए, होशियार माना डल है, तो इसलिए फिर कहीं कहते बाबा फिर कहीं भी छोड़ते नहीं है। बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे समझ में नहीं आता है कुछ, कई बातें कोई बात नहीं, बस बाबा बाबा तो कहना आता है ना, चलो उतना ही सही है। हम तो देखते हैं कई बूढ़ी माताओं को और कुछ नहीं आता, बस बाबा 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 सारा दिन उनके मुख से बाबा निकलता है। तो हम कहते ये भी अच्छा है ना, से तो और मुख से कुछ और शब्द निकले उसे बाबा बाबा ही सही, तो वह भी बाबा कहते हैं वो भी बहुत ऊंचा मार्क्स ले सकती है। ऐसी बात की नहीं है कि नहीं ले सकती है, लेकिन फिर भी बाबा कहेंगे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन की ये महानता है। और जो बाबा कहते हैं ये संगम युग का एक एक सेकंड कितना मूल्यवान है, पद्मों की कमाई भी है तो पद्मों का घाटा भी है। जैसे कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते तो उनका मुनाफा और घाटा भी करोड़ों में होता है। घाटा हुआ तो करोड़ों का नुकसान और फायदा हुआ तो करोड़ों का फायदा। अब जो बेचारे गरीब होते हैं, चलो थोड़ा दुकान छोटा मोटा है तो आज 100 रुपया की कमाई हुई या 200 की कमाई हुई या आज थोड़ा फायदा हुआ, आज तो ग्राहक ही नहीं आए हा? लेकिन जो करोड़ों में खेलने वाले होते हो तो सब कुछ उसी अनुसार ही देखते हैं, तो फायदा भी उतना घाटा भी उतना। तो हम कौन से व्यापारी है, छोटे मोटे व्यापारी है क्या? कौन से व्यापारी है? ज्ञान रत्नों का व्यापार करने वाले भगवान, तो भगवान ने सब कुछ दिया है, उनका दिया हुआ हम दे रहे हैं, ट्रस्टी है, वो भी समझना है। अभिमान भी नहीं आना चाहिए कि ये हमारी विशेषता है, हम हमारा ज्ञान है या हम दे रहे हैं, बाबा दे रहा है। लेकिन कदम कदम पर कमाई भी है तो घाटा भी है। अगर थोड़ा सा अभिमान आ गया घाटा, और सचमुच ट्रस्टी होकर के संभाला लाभ ही लाभ। इसलिए कदम कदम पर हमको चेकिंग करके चलना होगा कि कहीं पैर तो नहीं फिसल रहा है। जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ना, चोटी पर चढ़ते हैं, तो चोटी पर एक कदम आगे गए तो ऊपर पहुंच गए, और थोड़ा फिसलन हुआ, फिसलन हुई तो गए काम से। वो सांप और सीढ़ी की का खेल देखा है ना, सांप और सीढ़ी का खेल, तो उसमें क्या होता है, सांप भी एक है, वो 3 नंबर से चालू होता है, 98 तक पहुंचता है, माना 98 तक अगर आए और वहां सांप के मुंह में आ गए तो सीधा ही 3 नंबर पर या 2 नंबर पर, और एक सीढ़ी है उसके पास, वहां से चढ़ गए तो एकदम ऊपर। तो ऐसे नहीं हो कि ऊपर चढ़े और सांप ने काटा तो एकदम नीचे आ गए, तो ये सांप और सीढ़ी का भी खेल है। और माया दुश्मन तो बैठी है, आज बाबा ने वो भी कहा, क्या है ये कश्मकश, टग ऑफ वॉर। तो राम के बच्चे रावण के पास क्यों जाए, रावण सोचेगा ये हमारे मुरीद राम के पास क्यों जाए, तो और हम बीच में फिस जाते, सैंडविच हो जाते राम और रावण की लड़ाई में। परंतु हम किसके पक्ष के हैं वो तो हम जानते हैं, ये तो रावण ने हमको चुरा लिया, हमको पकड़ लिया, किडनैप कर लिया ना, हम रावण के तो नहीं है। वो जैसे किसको किडनैप कर लेते हैं ना, क्या अपहरण कर लेते हैं, तो रावण ने क्या किया, अपहरण कर लिया। तो माँ बाप को कितनी चिंता रहती है, मेरे बच्चे को कोई किडनैप न कर ले, आजकल तो कितना डर, बात ही मत पूछो, रोज अखबारों में देखो क्या क्या न्यूज आती रहती है। तो राम भगवान को भी बच्चों से इतना प्यार है कि कहीं माया मेरे बच्चों को ले न ले, और माया को ईर्ष्या होती है ये राम का क्यों बने, तो आधा कल्प मेरा ही बनाए, तो फिर हम बच्चों को क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, इतना सावधान रहना होगा। जिसको बाबा कई बार कहते तलवार की धार है, ये धार पर चलना होता है, यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं, बस सीधा सीधा चलना होता है। इसलिए सीधा देखो, बस बाबा को देखो और किसी को मत देखो। दो आंख में, एक आंख में रखो मुक्ति, दूसरी आंख में रखो जीवन मुक्ति। बस एक आंख में बाबा, दूसरी आंख में वर्षा, बाप और वर्षा, मुक्ति और जीवन मुक्ति। घर जाना है, नई दुनिया में आना है। पावन बन करके, संपूर्ण बन के घर जाना है और विश्व का मालिक आके बनना है। पर इसी की धुन लगी रहे तो बाबा कहते अंत में आप मक्खन से बाल हो जाएगा सब कुछ, इतना सुंदर रूप से बाबा के पास पहुंच जाएंगे। नहीं तो कल बाबा ने, कल का परसों का बाबा ने कहा पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। बाबा कई बार सावधान भी करते क्योंकि प्यार है ना बाबा का हम बच्चों से। तो कई बच्चे बाबा, कई कहते हैं बाबा ऐसे डराते क्यों हैं, पछताना पड़ेगा, सजा खानी पड़ेगी, ये होगा ये होगा। बाबा हमको डराते हैं क्या? तो बाबा डराते हैं, डराते हैं बाबा हा? पर सावधान करना ना जैसे डराना ना। बाबा सावधान करते हैं डराने के हिसाब से नहीं, ये भी प्यार है, ये भी प्यार है। क्यों प्यार है? देखो एक माँ होती ना बच्चे को कहेगी बेटा ये कहना मानो, पहले तो प्यार से कहेगी बेटा ये तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत लाडले हो, तुम आज्ञाकारी हो, तुम कहना मानने वाले हो, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो कह करके उसको कहेगी ये करो। पर अगर नहीं करेगा तो अब वो खाली पे बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो थोड़ी कहेगी। अब कराना है वो काम तो क्या कहेगी, क्या कहेगी फिर दूसरी बार? देखो बेटा तुम ये करोगे ना तो तुमको एक साइकिल लेकर के देंगे। तुम साइकिल, तुम चाहते हो ना साइकिल मिले, तो साइकिल तब मिलेगी जब तुम ये काम करोगे। तो पहले प्यार देगी, उसकी महिमा करेगी, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। पर नहीं मानता है तो प्रलोभन देगी, तुम ये करोगे ना तो तुमको ये देंगे। तो वो बच्चा सोचता ये मिलेगा तो मैं करूँ, अच्छा ठीक है कर लेता, वो चीज मिलेगी हा? ये चॉकलेट देंगे तुमको, ये देंगे, कई प्रलोभन देते हैं। अब परंतु फिर भी नहीं करता है तो देखो आंख दिखाएगी हा? भले बाबा कहते मारो नहीं बच्चों को, लेकिन आंख तो दिखाओगे ना, नहीं तो वो सुधरेगा कैसे? आंख बात ही नहीं करोगे आप। कृष्ण के लिए तो दिखाते, माँ उसको उखली से बांधती थी, मारती नहीं थी, लेकिन ये भी प्यार है। उसको आंख तो दिखाएगी ना, गुस्सा बोले नहीं करो पर आंख तो दिखाएगी ना। सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, कई माताएं कहती ना। पर बच्चों को हम बहुत गुस्सा करना पड़ता है ना, मारना पड़ता है, बच्चे सुधरते नहीं है। बाबा कहते मारो कभी नहीं, कभी भी हाथ नहीं चलाओ, ये तो कमल हस्त है, इन हस्तों से आशीर्वाद दो पर थप्पड़ कभी नहीं लगाओ। मुख से तो ये तो मुख कमल है, इस मुख कमल से गाली कैसे निकल सकती है, इन हाथों से थप्पड़ कैसे निकल सकती है, कोई नहीं सकता है। परंतु हाँ थोड़ा नाराजगी दिखाओ, अंदर में प्यार है लेकिन बाहर से नाराजगी, बात ही नहीं करना है। फिर कहके फिर कहेगा मम्मी हाँ मम्मी सॉरी, बच्चा है ना, तो थोड़ी उसको दिखाना तो पड़ता है। जैसे बताया ना वो सांप के लिए दिखाते हैं कि वो काटता था, तो किसी ने गुरु ने कहा भाई काटो नहीं ये पाप बनेगा, तो अगर कोई आए तो फूंक मारो हा? तो वो मरेगा नहीं क्योंकि काटोगे तो मर जाएगा, तो फूंक करेंगे तो उसको वो हवा आएगी तो डर जाएगा तो भाग जाएगा हा? तो इसी प्रकार माना कोई पाप कर्म न हो, तो इसीलिए बाबा का भी हम बच्चों से प्यार है। तो बाबा भी ये तीनों तरीके अपनाते हैं, पता है कैसे? बच्चे तुमको इतना ऊंच बनना है, बच्चे तुमको ये करना है, बच्चे 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 सारा दिन आप साकार मुरलियां टेप में देख सुनी है आपने? जिन्होंने सुनी है बाबा की टेप साकार में, साकार की टेप हाथ उठाओ। सबने नहीं सुनी है, जिन्होंने नहीं सुनी है कभी बाबा की आवाज वो हाथ उठाए टेप में, बहुत मिलती है, सब कुछ मिलता है, सीडीज मिलती है बाबा की आवाज, मम्मा की आवाज, दादी की आवाज, सबकी है, सबकी सीडीज है, जरूर सुनना। हर वाक्य के पीछे बच्चे 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 बच्चों बच्चों, यानी बाबा को बच्चों के सिवा कुछ था ही नहीं ना। तो बाबा की देखो अव्यक्त मुरली में भी जो पहली पहला महावाक्य बाबा किन किन बच्चों को देख रहे हैं, तो कितना प्यार, कितने बाबा ने हमको बाबा स्वमान देते हैं, तो बच्चों को किस नजर से देखते, कितनी ऊंची नजर से बाबा देखते हैं, पहला ही महावाक्य अव्यक्त मुरली का। साकार मुरली में भी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से मिल रहे हैं, तो रूहानी बच्चों को देख रहे हैं, तो कितना प्यार है रूहानी बच्चों से, तो ये प्यार बाबा दर्शाते। पर फिर बच्चे बाबा देखते हैं कि बच्चे तो नखरे कर रहे हैं, तो फिर बाबा दूसरा रूप लेता है, बाबा प्रलोभन देता है। देता है कि नहीं प्रलोभन? बच्चे अगर तुम पुरुषार्थ करोगे, ये करोगे, तो देखो तुम विश्व के मालिक बनोगे, तुमको स्वर्ग का अधिकार मिलेगा, बाबा तुमको पलकों पर बिठा के ले जाएगा। कितना ही सुंदर सुंदर बातें बाबा सुनाते हैं, मानो एक प्रलोभन है। अब वो पसंद आना चाहिए ना, तो उसके लिए बाबा का कहना मानना चाहिए। परंतु फिर भी अगर नहीं करते तो तीसरा प्यार कौन सा है? थोड़ा थोड़ा। हाँ बच्चे, देखना धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी, पर ये भी बाबा का प्यार है, बस पूरा करते, समझा? तो इसीलिए ऐसा हमें सुंदर ब्राह्मण जीवन बाबा ने दिया है, इस सुंदर जीवन का पूरा लाभ लेना है, हर घड़ी को सफल करना है, हर घड़ी में कमाई करनी है, और हर घड़ी से में ऊंचे से ऊंचा जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है? तो यही है ब्राह्मण जीवन की महानता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तो हम सभी ने शिलु बहन को सुना, बाबा तो ब्राह्मणों को, हम बच्चों को कहते ही हैं बाबा के घर का श्रृंगार। तो इसीलिए जब पहले पहले मुझे याद आता है, जब बाबा से बच्चे मिलने आते थे साकार बाबा के समय में, और थोड़े देर बाद में भी शायद हुआ, तो उस समय हमेशा जब बच्चे यहाँ से विदा लेते थे तो गीत बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। तो हम ब्राह्मण बहुत महान आत्माएं, ब्राह्मण छोटी आत्माएं, ऐसा नशा सारा दिन रहे जो आपको अभी शिलु बहन ने सुनाया, पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और करवाना, ये ब्राह्मणों का विशेष कर्म है। तो इन बातों को याद रखेंगे। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।